ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। अठारहवां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है। 50 देशों से भारतवंशी सम्मेलन के लिए स्वदेश आ रहे हैं। ओडिशा सरकार प्रवासी भारतीयों के समक्ष राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक प्रस्तुत करेगी। सम्मेलन का शुभारंभ युवा प्रवासी भारतीय दिवस से होगा। राज्य सरकार युवा कार्य और खेल मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वे विभिन्न क्षेत्रों में भारतवंशियों की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कैंगलू सम्मेलन की मुख्य अतिथि होंगी। इस वर्ष की थीम है विकसित भारत के लिए भारतवंशियों का योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवंशियों के लिए विशेष पर्यटक रेलगाड़ी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से रवाना करेंगे। ये विशेष रेलगाड़ी दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 3 सप्ताह तक विभिन्न गंतव्यों की यात्रा करेगी। प्रधानमंत्री सम्मेलन स्थल पर 4 प्रदर्शनियों का भी शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में 5 विषयों पर पूर्ण सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने के लिए ओडिशा पहुंचे विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पुरी और भुवनेश्वर के विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा किया। ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर आए विदेश मंत्री आज से भुवनेश्वर के जनता मैदान में शुरू होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा जाएंगे। इस दौरान वे 2 लाख करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश के पुदी मदाका में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस पर करीब 1,85,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना से 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियमावली 2025 का मसौदा नागरिक केंद्रित शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने कहा कि नियमावली का उद्देश्य विकास और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना है। मंत्रालय ने MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से 18 जनवरी तक जनता और हितधारकों से मसौदा नियमों पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज होगी। इन विधेयकों को आधिकारिक तौर पर संविधान के 129वें संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के प्रतिनिधि प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों के बारे में सदस्यों को जानकारी देंगे। निर्वाचन आयोग ने कल 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा कर दी। दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा, मतगणना 8 फरवरी को होगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। इस बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली के लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे क्योंकि आप सरकार अपने वादों को पूरा करने में फल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने उम्मीद जताई है कि मतदाता आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए फिर से चुनेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राष्ट्रमंडल देशों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक में भाग लेने के लिए कल ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और ग्वेनर्स की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। श्री बिरला ब्रिटेन की संसद की हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष लिंडसे हॉयल के निमंत्रण पर ब्रिटेन की यात्रा करेंगे। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। घने कोहरे के कारण देश के उत्तरी क्षेत्रों में कई ट्रेनों और उड़ानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। दिल्ली आने वाली करीब 25 ट्रेनें 5 से 6 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।